أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آموزش فلسفہ میں ہماری بحث جاری تھی، آج نو نمبر درس کتاب کے مطابق ہم شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے فلسفہ اور دوسرے علوم کے درمیان رابطہ۔ پچھلے درس میں بھی جو مطالب بیان ہوئے تھے انتہائی اہمیت کے حامل مطالب تھے، اور حتماً اس کی طرف توجہ رکھیں اور مزید اس پر کام کرنے کی کوشش کریں، چونکہ بہت سارے مغالطے جو اس وقت ہمارے بعض روشن فکر لوگوں کے ذہن میں پائے جاتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی مبتلا کرتے ہیں، وہ ہمارے آٹھویں درس میں جو نکات بیان ہوئے ہیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، کہ انشاءاللہ جب ہم معرفت شناسی کی بحث شروع کریں گے وہاں بھی بہت سارے مغالطے کشف ہوں گے اور جواب دیے جائیں گے ان کے، لیکن یہ بنیادی بحث تھی جو ہم نے آٹھویں درس میں کی ہے، کہ اس کے ایک ایک نقطے کی طرف اگر آپ کی توجہ رہی تو آپ بہت سارے سوالات، حتیٰ ایسے سوالات کہ جن کو آج تک آپ نے نہیں سنا، اگر کیے گئے تو آپ ان نکات کی بنیاد پہ ان کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں آ کر، چونکہ آٹھویں درس میں آپ نے یعنی جو تجربی روش ہے، جو اپنا عقلی روش ہے، اس کی حقیقت کو جان لیا، اس کے دائرہ کار کو جان لیا، پھر جو ہے تجربے کو جو فوقیت دینے کی کوشش کی گئی تھی عقلی روش کے اوپر، اس کے اندر جو مغالطہ موجود ہے اس کو پہچان لیا، اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی اس وقت ملحدین کے اعتراضات ہیں وہ اسی مغالطے کی وجہ سے ہیں، کہ جو ہم نے یہاں آٹھویں درس میں جو ہے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے۔ بارہ کہ مختصر طور پہ ایک اچھی گفتگو ہماری رہی اس کے اندر، اور آیت اللہ مصباح نے انتہائی خوبصورتی سے اور اختصار کی حالت میں بڑے اہم نکات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ نام درس میں یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ مختلف علوم ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے صاحب علوم موجود ہیں، اور پھر علوم جو ایک دوسرے سے جدا ہیں اس کے ملاق کے اوپر بھی ہماری ابتدائی بحثوں میں گفتگو ہوئی تھی کہ علوم کن ملاق کے تحت ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، تو تین ملاق سامنے آئے تھے، موضوع کے اعتبار سے بھی علوم جدا ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے اور ہیں، اہداف کے اعتبار سے بھی علوم جدا ہیں اور ہو سکتے ہیں، اور تیسرا جو ملاق اور معیار تھا وہ روش تھا، کہ روش کے اعتبار سے بھی آپ علوم کو جدا اور کر سکتے ہیں اور جدا ہیں بھی۔ تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ علوم جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، بحث یہ ہے کہ یہ علوم ایک دوسرے سے جدا ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط ان کا پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ مثلا اگر آپ فزکس اور ریاضیات، آپ ان دو علوم کو مد نظر رکھیں، ان دو علوم کے ماہرین آپ کو توضیح دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے فزکس کے اندر ریاضی کا کردار ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ریاضی کے اندر فزکس جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک عملی نمونہ جو ہے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بات ہم نے کی تھی تقریباً 100 نمبر صفحے کے اوپر فارسی کتاب کے مطابق، کہ جب ہماری بحث چل رہی تھی مبادی تصوری اور مبادی تصدیقی کے بارے میں، مبادی کو پھر ہم نے تصدیقی کو جو ہے وہ تقسیم کیا تھا، اس کی ایک قسم مبادی تصدیقی کی کیا تھی؟ وہ اصول کے جو نظری ہیں، بدیہی نہیں ہیں، وہ اصول کے جو نظری ہیں اور اس کو اثبات کی ضرورت ہے، तो अब एक इल्म के जो उसूल हैं कि जिनके जरिए से आपने उस इल्म के मसाइल को हल करना है, वो उसूल खुद नजरी हैं, यानी इनको इस्तदलाल की जरूरत है, इनको इस बात की जरूरत है। अब इन उसूल को कि जिनके जरिए आपने इस इल्म की मुश्किल हल करनी है, इन उसूल को इस बात इसी इल्म में नहीं किया जाएगा, बल्कि किसी और इल्म के अंदर जो है वो इसको इस बात किया जाएगा, फिर उसके जरिए आप इस बात करके अपने मोरदे बहस इल्म के अंदर उससे इस्तेफादा करेंगे और उसके जरिए उस इल्म के मसाइल को या इस बात करेंगे या बयान करेंगे उसको। तो ऐसे उसूल के जो नजरी हों उनको उसूले मौजू मौजूआ कहा गया, उसूले मौजूआ, उसूले मौजूआ मुताला करते हुए याद नहीं रहा मुझे कि उसूल मौजूआ का जो है वो इंग्लिश एक मुतरादिफ या इंग्लिश वर्ड जो है वो मैं देख लूँ। भारत कल के दर्स में अगर मुझे याद रहा तो मैं इशारा करूँगा उसकी तरफ, वाइल आप खुद जो है वो देखें। और अब मुझे फ़लसफ़ा का इंग्लिश तर्जमा हो चुका है तो लिहाजा इस्तेफादा करना आसान है इसका, कि इसकी PDF है, अगर आप दोस्तों को चाहिए होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो वो उसूल के जो नजरी हैं उनको उसूले मौजूआ कहा गया है। तो अब उसूले मौजूआ का जो इस बात है वो एक और इल्म के ऊपर है, तो इसका मतलब यह है कि एक इल्म दूसरे इल्म की मदद कर रहा है। उससे अगर इस इल्म के उसूल नजरी हैं, इनको इस बात की जरूरत है, तो ये इस बात इसी इल्म तो में तो नहीं हो सकते। कौन इसको साबित करेगा? एक दूसरा इल्म साबित करेगा। तो दूसरा इल्म किसकी मदद कर रहा है? इस इल्म की। तो आपस में इस तरीके का राबता जो है वो मौजूद है। और इसकी बेहतरीन नमूना जो आपकी खिदमत में बयान किया है वो फिजिक्स और रियाजी है। फिजिक्स और रियाजी को अगर आप देखें तो आपको ये नमूना अमल जो है वो आपको मिल जाएगा। बल्कि कहा जाता है कि जदीद फिजिक्स जो है वो उस वक्त तक समझ नहीं आ सकती जब तक कि इंसान को सही तरीके से रियाजियात ना आती हो। तो ये इस किस्म की जो है वो बहस की जाती है। मैंने शायद यहाँ पे कहीं लिखा भी था इसको, कि अभी मुझे याद नहीं है कि कहाँ ये बहसें हुई थी हमारी। हाँ भाई, यही यही बात है, ये एक मतलब था जो आपकी खैर में बयान किया। इसके बाद फिर अगली बहस जो यहाँ पर अगला मतलब जो बयान करते हैं वो ये कि उलूम फ़लसफ़ी एक दूसरे के साथ इर्तेबात रखते हैं। ये तो थी हमारी कि फ़लसफ़ी उलूम से हटकर बाज़ उलूम आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? इर्तेबात रखते हैं। जैसा कि बयान किया कि फिज़िक्स और रियाजी आपस में इर्तेबात रखते हैं, कि आप जब तक रियाजी नहीं जानेंगे उस वक्त तक आपको फिज़िक्स के मसाइल जो हैं वो सही तरीके से समझ नहीं आ पाएंगे। अब हम जब आते हैं उलूम फ़लसफ़ी के अंदर तो हमें उनके दरमियान भी क्या है? आपस में जो है वो इर्तेबात नज़र आता है। कैसे? उसका नमूना जो है वो ये पेश करते हैं। फरमाते हैं कि एक तरफ हमारे पास इल्म अखलाक है और एक तरफ हमारे पास जो है वो फ़लसफ़ी नफ्सियात है, जिसको आप साइकोलॉजी, फ़िलासफ़िकल साइकोलॉजी मसलन आप कह सकते हैं, साइकोलॉजी जिसमें फ़लसफ़ी एतबार से बहस होती है। अगर आप इल्मुन्नफ्स फ़लसफ़ी इसको मद्देनज़र रखें और अखलाक को मद्देनज़र रखें तो आपको महसूस हो जाएगा कि इनका आपस में बड़ा गहरा राबता है। कैसे? आप इल्म अखलाक में क्या बयान करना चाहते हैं? आप ये बयान करना चाहते हैं कि अच्छाई किसे कहते हैं, बुराई किसे कहते हैं, बदअखलाकी किसे कहते हैं, अजाब सवाब मतलब ये कैफर यानी किसी को क्या कहें आप, इनाम जो देना होता है, ये इस तरह की जो ताबीरें आप अखलाक में इस्तेमाल करते हैं हमारे माशरे में इस्तेमाल होते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करनी होती है। और ये इल्म अखलाक किसके साथ मरबूत है? इंसान के साथ मरबूत है। ये ना मरबूत है जानवरों के साथ, ना मरबूत है जमादात के साथ। इल्म अखलाक क्यों वजूद में आया है? इंसान की वजह से। और इंसान, फिर ये सवाल उठता है कि फकत इंसान ही के लिए ये इल्म अखलाक क्यों वजूद में आया है? तो आपको ये बात समझ में आएगी कि चूंकि इंसान जो है वो इरादा रखता है, मुख्तार है, लिहाजा इंसान जो है वो अपने अफ़ाल जो है वो अपने इरादे और इख्तियार के साथ अंजाम देता है, और इसका इरादा रखना, इसका मुख्तार होना अच्छाई और बुराई के मफहूम को क्या है, माना अता करता है। मसल अगर इंसान मुख्तार ही ना होता, अगर इंसान बा इरादा ही ना होता, तो अगर कोई फेल अंजाम दे रहा है तो उसको अच्छा बुरा नहीं कह सकते थे। आप अच्छा और बुरा उसको इस वजह से कह रहे हैं चूंकि वो अपने इख्तियार से उस फेल को अंजाम दे रहा है, और अगर वो ठीक अंजाम दे रहा है उसको कहेंगे आप अच्छा अंजाम दे रहे हैं, अगर सही अंजाम नहीं दे रहा होगा तो आप कहेंगे बुरा अंजाम दे रहे हैं आप उसको। लेकिन अगर वो इंसान मजबूर होता, इरादा ना रखता होता, ना आप उसको अच्छा कह सकते, ना आप उसको बुरा कह सकते। जैसे रिबोट है मसलन, रिबोट भी आप क्या है, तकरीबन इंसान नुमा बन चुके हैं। अब रिबोट एक काम करता है तो आप उसको ये नहीं कहेंगे रिबोट बड़ा अच्छा, रिबोट बहुत अच्छे काम करता है, या रिबोट अगर एक काम अंजाम दे दे तो आप रिबोट की मजम्मत करने लग जाएं कि बुरा काम अंजाम दिया है, नहीं हो सकता। बल्कि वो जो इरादा इंसान के अंदर पाया जाता है, उस इरादे की वजह से आप ये मफाहिम जो सामने आए, और ये मफाहिम इल्म अखलाक में बहस होते हैं। अब क्या है इसका मतलब, ये है कि आप जब तक इंसान के इरादे को साबित नहीं करेंगे उस वक्त तक इल्म अखलाक वजूद में नहीं आएगा। बस बात यहां के रुकती है कि आप इरादे के जो है वो उस पर बहस करें। आप तो इरादे की बहस जो है वो कौन कौन सा इल्म बहस करेगा, वो इल्म नफ्स फलसफी बहस करेगा, यानी फिलोसफी आप साइकोलॉजी मसलन जो है कि वहां पर ये बहस होगी कि इरादा जो है वो इंसान के रूह की जो है वो खसूसियात में से है, और इसको साबित करने का तरीका जो है वो अकली रविश है। और अकली रविश जाहिर सी बात है किसी साइंसी इल्म में तो नहीं की जा सकती, उसी में कही गई की जाएगी कि जो अकली रविश के साथ इन मसाइल को साबित करे वो इल्म नफ्स फलसफी है। ये एक मतलब था। यहां पे एक और हमने मिसाल क्या दी कि उलूम फलसफी के दरमियान भी आपस में क्या है, राबता मौजूद है। अब तीसरा एक और मतलब यहां बयान करते हैं कि अगर आप नेचुरल साइंसेज को मद्देनजर रखें और उलूम फलसफी को मद्देनजर रखें तो आपको इनके दरमियान भी इर्तिबात नजर आएगा। उलूम फलसफी जो हैं वो मदद ले रहे होते हैं किससे, नेचुरल साइंसेज से, उलूम तबीई से। कैसे? मसलन अगर आप जो तजर्बी नफ्सियात का इल्म है, या आप इसको कह लें कि एम्पेरिकल साइकोलॉजी जो है इसके अंदर ये बात साबित है, माहिरीन ने ये बात साबित की है कि अगर बाज़ फिजिकल और फिजियोलॉजिकल शराइत व कंडीशन मौजूद हों तो उसके अंदर इंसान आंख के होते हुए भी नहीं देख सकता, कान के होते हुए भी सुन नहीं सकता। इंसान एक ऐसी कैफियत में होता है कि इंसान आवाज मौजूद होती है सुन नहीं पाता, सामने चीज पड़ी होती है देख नहीं पाता उनको। तो ये चीज जो है वो क्या है, एम्पेरिकल साइकोलॉजी के अंदर बहस हुई है और साबित है, माहिरीन ने किया। कैसे, उसकी मिसाल देता हूं और आपके साथ हुआ भी होगा और आगे होगा भी। मसलन आप एक इंतहाई गहरे मतलब को जो है ना हल कर रहे हैं और एक बहुत गहरी सोच में चले गए। कुछ बाज़ोकात होता है इंसान कि या परेशानी के आलम में ऐसा होता है, या किसी मसले के हल में ऐसा होता है कि इंसान जो है वो अपने मुहावरे में क्या इस्तेमाल करते हैं कि मसलन किसी और दुनिया में किया हुआ था। जब इंसान देखता है ना कि बुला रहा होता है वो नहीं सुन रहा होता, जब वो वापस आता है हाँ क्या हुआ, तो वो कहते हैं किस दुनिया में गए हुए थे, ये इस दुनिया में था ही नहीं मसलन आके। तो इंसान इतना मगन बाज औकात हो जाता है एक एक नुक्ते के ऊपर या एक मसले के अंदर, जो भी आप कैफियत मद्देनजर रख लें, तो उसको ना अपने इर्द गिर्द की आवाजें सुनाई देती हैं, ना उसको अपने सामने पड़ी हुई चीजें जो हैं वो दिखाई देती हैं। ये बाज औकात हुआ भी है, शायद आपकी जिंदगी में हुआ हो कि आप सड़क पे चल रहे हैं, आप एक मतलब के ऊपर फिक्र कर रहे हैं, और जहरी सी बात है इंसान इधर उधर देख तो रहा होता है, लेकिन क्या होता है हकीकत में वो किसी मतलब पर तमरकुज किए हुए होता है, और सामने आपका एक दोस्त आता है, वो आपको दूर से जो है, चूंकि आपका मुंह उस तरफ है, आपकी आंखें उस तरफ हैं, आपका दोस्त जो है वो आपको हाथ हिला के जो है वो सलाम करता है, और आप फिर भी आराम से जो है वो निकल जाते हैं, और बाद में वो फिर आपको आके गिला करता है कि अजीब आदमी हो तुम, मुझे देख भी रहे थे, मेरे पास से गुजरे भी, मैंने तुझे बुलाया भी, मैंने इशारा भी किया, आपने क्यों नहीं देखा मुझे, मसलन आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं है। हालांकि आप उसी के पास से गुजर के गए हैं, आपकी चेहरा उसी की तरफ था, लेकिन क्या है आप उसको नहीं देख पाए। उस ये चीज जो है वो साइंसी तौर पे साबित है, एम्पेरिकल साइकोलॉजी के अंदर माहिरी ने ये बात साबित कर दी है। जब ये मतलब साबित हो गया कि अगर इंसान अपने जहन को किसी नुक्ते या किसी मौजू पर तमरकुज कर लेता है, उसमें मगन हो जाता है, तो वो बाज़ सिदाओं को शायद नहीं सुन सकता और बाज़ चीज़ों को वो नहीं देख पाता उस वक्त। तो ये वाला जो मतलब है कि जो साइंस ने साबित कर दिया है, इल्मुन्नफ्स फलसफी यानी फिलोसफिकल साइकोलॉजी जो है वो आकर फिर क्या करती करती है, वो इस्तेफादा करती है, इसको ले लेती है मुकदमे के तौर पर और आकर साबित कर देती है अपनी रविश के साथ कि इंसान का नफ्स इंसान की रूह मुजरद है, या इल्म जो है वो क्या है, मुजरद है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर इंसान का इल्म मादी होता, कि इसके ऊपर अभी तफसीली बात नहीं करनी, फिर इबारत को खोल रहा हूं, अगर इंसान जो इल्म हासिल करता है वो इल्म जो है वो अगर मादी होता, इदराक उसका मादी होता, तो फिर मादी शराइत तो पूरे थे, इंसान की आंख भी मौजूद थी, इस आंख के पीछे जो आसाब हैं वो भी मौजूद थे, अपना काम अंजाम दे रहे थे, ये मगज भी मौजूद था, तमाम चीजें मौजूद थी और सामने चीज भी पड़ी थी, दृश्य सब मादी शराइत फराहम थे, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं देख पा रहा। इसका मतलब ये है कि जो असल इदराक है, असल इदराक, इदराक करने वाली चीज कोई और है, ये मगज नहीं है। अभी आजकल के जो जदीद साइंस है उसके अंदर क्या है, वो ये कहते हैं कि मग्ज़ देखता है इसको आकर। हमारे पास आप ही की बयान करदा जो है वो क्या है, तजर्बा मौजूद है, आप ही ने साबित किया हमारे लिए कि बाज़ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिसके अंदर इंसान सामने पड़ी चीज को नहीं देख पाता, अपने इर्द गिर्द की आवाजों को नहीं सुन पाता। तो अगर मग्ज़ इन्हें सुनना था, अगर मग्ज़ इन्हें देखना था, इदराक जो है वो काम फकत मगज का है, तो फिर तमाम वसाइल व अबजार होने के बावजूद क्यों नहीं सुना उसने, क्यों नहीं देखा उसने। इसका मतलब ये है कि इदराक करने वाली चीज कोई और है, मगज वसीला है, जिस तरह आंख वसीला है देखने का, इसी तरीके से मगज भी वसीला है देखने का, टूल है, ना कि ये देखता है या ये इदराक करता है। इदराक कोई और चीज है और उसको हम रूह कहते हैं, और इस रूह के जो है वो तजर्रुद के कायल हैं और वो मादी नहीं है। बस आपने देखा कि इल्मुन्नफ्स फलसफी के अंदर जब इदराक के मादी होने की नफी की जाती है, तो इस्तेदलाल के अंदर क्या होता है, नेचुरल साइंसेस से इस्तेफादा किया जाता है, यानी एम्पेरिकल साइकोलॉजी जो है उससे इस्तेफादा करके अपने इस्तेदलाल को जो है वो कायम कर लिया जाता है। अब यहां पर जब इर्तिबात मौजूद है, जब हमने ये तीन किस्म के इर्तिबात आपकी खिदमत में बयान कर दिए, तो आयतुल्लाह मिसबाह हाफिज़ुल्लाह फरमाते हैं, असल सवाल ये है कि फलसफा के जो फलसफा उला, हमारी ये बात चूंकि तय हो चुकी है पहले है, जब हमने इस्तिलाहात पे बात की थी कि हम फलसफे से मुराद फलसफा उला लेंगे, मेटाफिजिक जिसे कहते हैं, या मसलन जी माबादुत तबिया जो है वो कहते हैं, ये और बाकी उलूम के दरमियान राबता है या नहीं है, फलसफा और उलूम इनके दरमियान इर्तिबात है या इर्तिबात नहीं है। तो जवाब उसका ये है कि فلسفہ اور باقی علوم کے درمیان ارتباط موجود ہے، لیکن یہ ارتباط ایسا نہیں ہے کہ اس سے فلسفے کا محتاج ہونا لازم آئے. دقت کرنی ہے آپ نے اس مطلب کی طرف. ہم نے جب مبادی تصدیقیہ والا درس پڑھا تھا، مبادی تصوری اور مبادی تصدیقیہ کی جب ہم نے بات کی تھی، اس کے اندر ہم نے ایک مطلب کو توضیح دیا تھا. کون سا وہ چیپٹر نمبر بنتا تھا؟ درس نمبر 7. درس نمبر 7 کے اندر جو ہے ہم نے یہ بات ثابت کی تھی کہ فلسفہ جو ہے وہ کسی علم کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تمام علوم فلسفے کے محتاج ہیں. تفصیل سے بات ہوئی ہے اس کے اوپر. تو اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ اور علوم کے درمیان ارتباط موجود ہے، اور یہ ارتباط بھی دو طرفہ ہے، یعنی بعض موارد میں علوم فلسفے کی مدد کرتے ہیں اور اکثر موارد میں فلسفہ علوم کی مدد کرتا ہے، تو اب جہاں پر دوسرے علوم فلسفے کی مدد کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ تصور نہ آئے کہ مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسفہ ان علوم کا محتاج ہے. محتاج ہونا لازم نہیں آتا، فقط ایک مطلب کو ثابت کرنے کے لیے یہ بعض اوقات علوم سے استفادہ کر لیتا ہے، لیکن فلسفہ محتاج نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے فلسفے کے پاس اپنے دلائل ہیں. یہ بعض اوقات پھر علوم کا سہارا کیوں لیتا ہے پھر؟ کیونکہ مخاطب کا تقاضا ہوتا ہے. مثلا آپ نے علم کے مجرد ہونے کو اگر ثابت کرنا ہے، تو فلسفے کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں کہ اس کو کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے عقلی بنیادوں کے اوپر، عقلی مقدمات کے ذریعے، عقلی استدلال کے ذریعے علم کے تجرد کو ثابت کر دیتا ہے. وہ جو دلائل دیتا ہے وہ دلائل کامل بھی ہیں، خود اس کے اندر خدشہ نہیں کر سکا ابھی تک. بعض جو استدلال بہت محکم ہیں فلسفے کے، لیکن پھر بھی وہ علم کے تجرد کو ثابت کرنے کے لیے، کہ علم ایک مجرد چیز ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ بعض سائنسز کا سہارا لے لیتا ہے. کیوں لے رہا ہے؟ محتاج ہے؟ نہیں، محتاج نہیں ہے، بلکہ مخاطب کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ وہ سائنس پر ایمان رکھتا ہے اور سائنس کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر اتنا ایمان نہیں ہے اس کا، اب فلسفہ سائنس سے مدد لے کر اس کو توجہ دلاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ فلسفہ یوں قسم کی مدد لیتا ہے، نہ کہ کوئی بندہ یہ تصور کرنے لگ جائے کہ فلسفہ اگر علوم سے مدد لیتا ہے تو فلسفہ جو ہے وہ علوم کا محتاج ہے. بات واضح ہے؟ بس یہ ایک مطلب جو ہے وہ آیت اللہ مصباح فیضہ اللہ یہاں پر بیان کرتے ہیں. اب آتے ہیں اصل مطلب کی طرف، کہ فلسفہ جو ہے وہ علوم کی مدد کرتا ہے. پہلے یہ والی بات کرتے ہیں، پھر علوم کیسے فلسفے کی مدد کرتے ہیں، یہ پھر بات کا موضوع ہے. پہلا موضوع، فلسفہ مدد کرتا ہے علوم کی. دو قسم کی مدد ہیں کہ جو فلسفہ کرتا ہے. اب چونکہ اس کے بارے میں ہماری بات ہو چکی ہے، مختصر طور پہ میں یہاں پر بیان کرتا ہوں، اور آیت اللہ مصباح نے یہاں تھوڑا سا تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی ہے. یہاں پر پہلی جو مدد کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم کا موضوع ثابت کرتا ہے. ابھی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ان درسوں کے اندر تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی کہ ایک علم اس وقت علم بنتا ہے کہ جب وہ ایک موضوع رکھتا ہو اور اس علم میں مسائل کو بیان کیا جاتا ہے. کن مسائل کو؟ کہ جو اس کے موضوع کے ہوں، اس کے موضوع سے ریلیٹ ہوں. تو موضوع کا اثبات خود اس علم کی ذمہ داری نہیں ہوتی، موضوع کا اثبات دوسرے علم کا ہوتا ہے، اور یہ موضوع جو ہے وہ فلسفہ ثابت کرتا ہے. جیسا کہ مثال دی تھی آپ کو، نیچرل سائنسز جو ہیں وہ مشترک ہیں اس بات میں کہ وہ ایسی چیز کے بارے میں بات کرتی ہیں کہ جو کیا ہو، جسم ہو. درست ہے؟ बस हम फिजिक्स मैटर के बारे में बात करते हैं, वो जिस्म है। दुरुस्त है। अब जिस्म का इस बात किसने करना है? फलसफे ने। बस मौजू के इस बात के लिए उलूम जो हैं वो फलसफे के मोहताज हैं। बस वाजे, बस एक मतलब जो है वो ये इन्होंने यहां पर बयान किया है। फिर आकर एक मतलब का जो है वो यहां पर इजाफा करते हैं, वो ये मरबूत यही है जो मतलब बयान कर दिया है उसमें, कि एक मर्तबा तो ये है कि खुद मौजू का इस बात उस इल्म की जिम्मेदारी नहीं है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि बाज औकात मौजू को इस बात करना अकली रविश से जरूरी होता है, चूंकि वो साबित ही अकली रविश से हो सकता है, वो तजर्बी रविश से साबित ही नहीं हो सकता। तो यहां पर फिर क्या है, फलसफा उला जो है वो मैदान में आता है और उस मौजू को साबित कर, जैसा कि जिस्म के वजूद को इस बात करना वो क्या है, वो फलसफा उसको साबित करता है उसमें। या मसलन अखलाक के लिए आप इरादे को साबित करते हैं, तो इरादा अकली रविश से साबित होता है, और वो कौन साबित करेगा? फलसफा साबित करेगा। बस ये एक मदद है कि जो फलसफा बाकी उलूम के लिए करता है। यहां पर एक नुक्ता आयतुल्लाह मिसबाह हफ़िज़ुल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ उलमा ने जरा मुबालगा आरा की है। क्या कहते हैं कि बाज़ उलमा ने यह कहा है कि तमाम के तमाम उलूम बगैर इस्तिस्ना के अपने मौजू के इस बात के लिए फलसफे के मोहताज हैं, तमाम उलूम बगैर किसी इस्तिस्ना के। आयतुल्लाह मिसबाह फरमाते हैं कि ना, ऐसा नहीं है। इतना मुबालगा आराई जो है वो ये नजर जो है ये पाई जाती है, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? फरमाते हैं कि फलसफे की तरफ वो उलूम मोहताज होंगे अपने मौजू को साबित करने के लिए कि जिनका मौजू बदीही नहीं होगा, जिनके मौजू को इस बात की जरूरत होगी। लेकिन अगर एक इल्म ऐसा है कि जिसका मौजू वाज़े रोशन और बदीही है, उसको इस बात की जरूरत नहीं है कि वो फलसफे के पास जाए और कहे मुझे जो है वो मौजू साबित करके दो। बस यहां कैद लगाने की जरूरत है। आयतुल्लाह मिसबाह फरमाते हैं कि वो उलूम फलसफे की तरफ मोहताज हैं अपने मौजू को साबित करने के लिए कि जिनका मौजू बदही ना हो, जिनका मौजू नजरी हो, वो फलसफे के मोहताज है। मतलब आसान है, ये एक मतलब इन्होंने बयान किया। बस पहली मदद होगी मौजू का इस बात। दूसरी जो मदद फलसफा करता है उलूम की, वो है उसूले मौजूआ का इस्बात। उसूले मौजूआ बार बार आ रहा है और उसकी तोजी दे दी है, तो आपके जहन में बैठ जाना चाहिए कि उसूले मौजूआ से क्या मुराद है। यानी वो कुल्ली तरीन उसूल ना, बल्कि वो उसूल के जिनके जरिए एक इल्म के मसाइल को हल करना है, और वो उसूल नजरी हो। वो उसूल क्या हो? नजरी हो। ये कैद जरूरी जेन में रखें, उन उसूल को इस बात की जरूरत हो, उनको कहते हैं उसूले मौजूआ। इन उसूले मौजूआ में से जो कुल्ली तरीन उसूले मौजूआ होंगे उनको फलसफा साबित करता है। मिसाल के तौर पे पहले भी मिसाल दी थी आयतुल्लाह मिसबाह, यहां पर जो है वो बड़े तफसील से वारिद हो जाते हैं, और हम उस तफसील से वारिद नहीं होंगे चूंकि मुतालाती मतलब है, आप खुद उसको मुताला कर लेंगे। फरमाते हैं कि कुल्ली तरीन असल एक जो पाई जाती है और नजरी है, वो क्या है? असल इल्लियत, बल्कि वो क्या नाम है इनका, अशिया का आपस में जो राबता है वो इल्लत और मालूल का होना है। और इसकी जो फरुआत हैं वो फरुआत फलसफा साबित करेगा। दुरुस्त है। बल्कि असल इल्लियत को फ़लसफ़ा जो है वो बदीही मानता है, और हम यहाँ पे इसको जो है वो उसूल के उन्वान से जो है यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि तमाम उलूम चूंकि इस असल के मोहताज हैं, लिहाजा फ़लसफ़ा उसको साबित करता है। और ये कानून इस्तेफादा दूसरे उलूम करते हैं, लेकिन साबित किसको कौन करता है? फ़लसफ़ा करता है। असल इस बात के अंदर जो है वो फ़लसफ़े का चूंकि वजीफ़ा पाया जाता है, तो इस एतबार से इसको असूल मौजूआ के उन्वान से बहस की जा रही है। खूब, अब यहाँ पे इन्होंने यह बयान किया कि अगर आप साइंसदानों की जिंदगियों को देखें तो वो लेबॉरेटरी में जाते क्यों हैं। उसकी वजह ये है कि हर किस्म का साइंसदान जो है, अगर वो फिजिक्स के साथ मरबूत होगा तो वो बाज़ अनासिर की खसूसियात को जानना चाहेगा, अजसाम की तरकीब और इन चीज़ों को जानना चाहेगा, और जो अजसाम के मुख्तलिफ जिस्मों के जो खवास पाए जाते हैं उन खवास की इल्लतों को तलाश करेगा कि इस जिस्म की क्यों खसूसियत है, उसकी खसूसियत की इल्लत को तलाश करेगा। या मसलन अगर कोई जो है वो डॉक्टर है तो जब बीमारी आती है तो बीमारी की इल्लत कश्फ करने के पीछे जाता है, दुरुस्त है। और इस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ जो वो माहरीन हैं, चाहे वो साइंस के साथ मरबूत हो या किसी और इल्म के साथ, हर इंसान जो है वो एक फेल की इल्लत की तलाश में होता है। तो यहां से ये बात समझ में आ जाती है कि ये चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर, चाहे वो जो है किसी भी साइंस का माहिर हो, वो ईमान रखता है इस बात पर कि इस कायनात पर एक असल हाकिम है, और वो है इल्लत व मालूल की, सबब व मुसबब की। अगर एक फेल इंजाम पाता है उसकी हतमन कोई इल्लत है। अगर इल्लियत का इतिकाद ना होता इन माहरीन का, तो फिर लेबॉरेटरियां बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इल्लियत ना होने का नतीजा यह निकलता कि बीमारी आ गई है और बगैर इल्लत के आ गई है। तो अब बीमारी से हमारा सरोकार है, अब इसके साथ लड़ें जिस तरीके से लड़ सकते हैं, अब उसकी इल्लत कश्फ करने के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही कोई बीमारी सामने आती है उसकी इल्लत के पीछे भागते हैं कि ये आई क्यों है, सबब क्या बना है कि ये वजूद में आई है आकर। इसका मतलब है कि सबब है इसका कोई, तो आप तलाश करने के पीछे हो। बस कोई भी इंसान जो है वो गाफिल नहीं है कि असल इल्लियत जो है इस कायनात में मौजूद है। बस ये असल इल्लियत जब इतनी जरूरी है कि हर इल्म में काबिले इस्तफादा है, तो कौन इसको साबित करेगा? कहते हैं ये फलसफा साबित करता है। और फिर इस असल इल्लियत के मुख्तलिफ जो है वो शाखें, फिर नीचे मजीद मसाइल निकलते हैं इसके अंदर से, क्या कि हर मालूल की एक मुनासिब इल्लत होती है, ना ये कि हर इल्लत से हर मालूल सादिर हो जाता है, आग से ठंडक निकले ठंडक से गर्मी निकले, ना ऐसा नहीं है, बल्कि हर मालूल एक मुनासिब इल्लत रखता है। अब ये क्या है? एक नया मसला है कि जो इसी इल्लियत के अंदर से निकल रहा है। या मसलन कहा जाता है कि अगर इल्लत ताम हो जाए तो मालूल का वजूद हतमी हो जाता है। अब ये भी एक मसला है, इसको भी फलसफा जो है वो साबित करता है। और इस किस्म के बाकी मसाइल के जिस सारों को यहां पर बयान करने की जरूरत नहीं है। बस यहां तक ये मतलब जो है वो साबित हो जाता है, वो ये कि फलसफा जो है वो दो मकाम पर तमाम उलूम की या अक्सर उलूम की मदद करता है, एक मौजू का साबित करना और दो उसूले मौजूआ को साबित करना, ये जो है वो फलसफा मदद करता है। इसके बाद फिर अगला मरहला आ जाता है कि अब उलूम किस तरीके से फलसफे की मदद करते हैं, ये एक जो है वो बहस आ जाती है कि इंशाल्लाह इसको कल बयान करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, चूंकि इसके अंदर इन्होंने बाज़ ऐसे मसाइल बयान किए हैं कि जिनको थोड़ी वजाहत की ज़रूरत है, मुख्तसर करके नहीं गुजर सकते। मैंने यहाँ पे बाज़ इबारतों को छोड़ दिया है चूंकि मतलब इंतहाई आसान था, इन्होंने थोड़ी सी वजाहत करके बयान की है कि आप इस सफ़े का जो है वो हतमन खुद मुताला जो कर लेंगे, लेकिन जो लुब था इसका मतलब का, जो खुलासा था इस تمام صفحے کا وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر، باقی انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.